اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے کنسرنز ہیں اور کنسرنز میرے پاس بہت زیادہ آئے ہیں اور خاص طور پہ خواتین کے کنسرن بہت زیادہ ہیں میرے پاس. اور جب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب پہلی بیوی سے پوچھے بغیر دوسری شادی کی جا سکتی ہے, اس کے بعد تو ایک شور مچ گیا ہے. پہلی بیویوں نے کافی شور مچا دیا. ایک اور بڑا کنسرن جو کہ بڑا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب 10 سالہ بچی کی شادی ہو سکتی ہے. سو 9-10 سال کی بچی کی اگر شادی ہوگی تو کیا معاشرے میں کیا چینجز آئیں گی, اور یہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز جو میں بار بار پہلے بھی ذکر کرتا آیا ہوں اور آج پھر کرنا چاہوں گا اس بات, وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے قرآن پاک کو ایک بہت اوپر کسی جگہ پہ کسی الماری میں رکھ دیا ہے, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو اٹ. ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں چاہتے, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کا مطلب ایز سچ میں سمجھ نہیں آتا. میں نے بار بار گزارش کی ہے کہ جناب قرآن پاک کو پڑھیے ضرور, اگر نہیں سمجھ آتی کسی بھی لینگویج میں پڑھ لیجئے تاکہ سمجھ آ جائے, اور اگر سمجھ آ جائے گی تو میرے خیال میں 90% مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور جو آج کل ہمارے پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب ہمیں ہر بات پوچھنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کے سامنے جانا پڑتا ہے یا ان سے مشورہ کرنا پڑتا ہے جن کو خود اسلام کا شاید اتنا علم نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ اس قابل نہیں رہے, ہم لوگ گہرائی میں نہیں جاتے, تفصیل سے پڑھتے نہیں ہیں قرآن پاک کو, اس لیے ہمارے لیے ایشوز ہوتے ہیں اور ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں پہ جو لوگ شاید اسلام کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھتے. سو وہ جو بھی کہتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہمیں ماننی پڑتی ہے اور ہم مان لیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ساری جو مسئلہ ہے, سارے جو ایشوز ہیں وہ ٹوسٹ ہو جاتے ہیں. اسلام کی نظر میں شاید ان کا مطلب کچھ اور ہو, لیکن ہم ناسمجھ لوگوں کے پاس جا کر اسلام کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اسلام کی ڈیفینیشن کو یا اسلام کے مطابق جو باتیں کرنی چاہیے ان کو ٹوسٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں, جس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اسلام کو اتنا مشکل ریلیجن نہیں ہے, آپ اس کو پڑھیے تو میرے خیال میں کافی بہتری ہوگی اس میں, اور کوئی اس میں کوئی دور رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس سے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اور وی شوڈ بی پراؤڈ آف دس تھنگ دیٹ وی آر مسلمز. اچھا مسلم کون ہے, برا مسلم کون ہے, میں اس ڈیفینیشن میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ہر انسان بہتر ہے, بہتر مسلمان ہے, اور اس کو اگر اسلام کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو اچھے کسی اسکالر کے پاس, اچھے کسی ریلیجس اسکالر کے پاس اگر وہ چلا جائے گا تو اس کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی, سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, کنفیوژن ختم ہو جائیں گی. سو یہ کچھ سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں, ان پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اینڈ آئی وڈ سے کہ دا بیسٹ پرسن وڈ بی جاوید احمد غامدی صاحب, وہ ریلیجس اسکالر. ملک میں تو موجود نہیں ہیں, ملک سے باہر ہیں, لیکن میں ان سے گزارش کی, میں نے ان سے, اور طبیعت ان کی بھی ناساز تھی, اور لیکن پھر بھی انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے کہا جی کہ میں ضرور جو لوگوں کے ذہنوں میں جو اس وقت جو ایشوز ہیں ان کو میں حل کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے آؤں گا. سو آج انہوں نے ہمیں جناب آنر دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. غامدی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں.
طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ طبیعت کچھ ناساز ہے آپ کی, اور بڑے عرصے سے ناساز ہے.
جی مجھے کچھ فلو کی شکایت ہے, اور ابھی بھی میں بار بار اس کا شکار ہو رہا ہوں. بس دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے.
چلے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. یہ اسٹوڈیو میں آواز اونچی کریں بھائی, آواز نہیں آ رہی. اچھا گاندھی صاحب, ایک شروع کرنا چاہوں گا اس چیز سے کہ کیا 9-10 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے؟
ہونے کو تو آپ جس کی چاہے شادی کر دیں, لیکن یہ کرنی چاہیے نہیں. करनी चाहिए, रियासत को भी कानून साजी करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि 10 साल की बच्ची की आप शादी करेंगे तो वो शादी की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी, बच्चे का तहमुल कैसे करेगी, उसको माँ बनना है, एक घर को चलाना है, ये सारी जिम्मेदारियां वो कैसे अदा करेगी। इस वजह से रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलात में कानून साजी करे, अपने मुआशरे को देखे, उसके हालात को देखे, अगर कोई चीज लोगों के लिए मजर्रत का बायस बन रही है, नुकसान का बायस बन रही है, तो यही वो चीजें होती हैं जिनको सामने रखकर कानून साजी की जाती है। पार्लियामेंट तो कायम इसलिए की जाती है कि वो लोगों की बेहतरी के लिए कानून बनाती रहे। ये बात बिल्कुल गलत है, इस्लाम ने इस पर कानून साजी से मना किया है। ऐसी कोई चीज ना कुरान में है ना किसी हदीस में है। वो तमाम मामलात जिनमें हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई अमल लोगों के लिए नुकसान या मजर्रत का बायस बन रहा है, या किसी की हक तलफी उससे हो रही है, या सोसाइटी में कोई खराबी उससे पैदा हो जाएगी, हम उसको रोकने के लिए कानून बना सकते हैं। और हमारे मुल्क में इस मकसद के लिए कानून बना दिया गया है, मेरे ख्याल में उस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करना चाहिए।
लेकिन अगर कुछ सिफारिशात किसी भी तरफ से आ जाए कि जनाब 10 साल की बच्ची की शादी करा दें, तो डोंट यू थिंक कि पूरा माशरा जो है उसमें एक खलबली सी मच जाएगी और एक इशू खड़ा हो जाएगा यहाँ पे?
अरे जमहूरी माशरे में ये बात तो कहीं से भी कही जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे माशरे को अब बहुत मैच्योर हो जाना चाहिए और इस तरह की चीजों की गलती लोगों पर आगे बढ़ के वाजे करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो किसी कबायली निजाम में नहीं रह रहे, एक जदीद रियासत में रह रहे हैं, वो 21वीं सदी में दाखिल हो गए हैं। इसमें अब घर उस तरह नहीं बनते जैसे कबायली जिंदगी में बनते थे, जरूरतें और जिम्मेदारियां भी तब्दील हो गई हैं। चुनाचे अगर कोई शख्स यहाँ बच्चियों की शादी इस तरीके से करता है तो वो बच्चियों पर भी जुल्म करता है और आने वाली नस्लों पर भी जुल्म करता है। इंसानी तमद्दुन में तब्दीलियां होती रहती हैं। एक चीज एक कबायली माशरे के अंदर बड़ी मौजू लगती है, लेकिन हो सकता है कि जागीरदाराना तमद्दुन में वो मौजू ना हो। और हम जिस दौर में अब जी रहे हैं इसमें असल में बच्चे पैदा करना और घर चलाना ये उस तरह नहीं रहा जिस तरह के कदीम जमानों में हुआ करता था। मैं तो अपने बचपन को जानता हूँ कि हमारी देहाती जिंदगी में आज से 40-50 साल पहले जो मुआशरत थी वह बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। तो जमाने के तकाजों को सामने रखकर कानून साजी करनी चाहिए। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने कहीं ये हुक्म दे दिया होता कि 10 साल की बच्ची की शादी करो तो फिर बात अलग थी। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, कुरान इससे खाली है, हदीस इससे खाली है, इसका फैसला हमें करना है। और हम ये देखेंगे कि हमारी सोसाइटी के लिहाज से कौन सी चीज नुकसानदेह है। अगर कोई चीज नुकसान का बायस बन रही है, और जाहिर है कि नुकसान का बायस बनेगी, आप 10 साल की शादी करके बच्ची की उसके ऊपर जो जिम्मेदारी डाल रहे हैं उसका एहसास कीजिए कि वो क्या है। उसकी सेहत बर्बाद हो जाएगी, वो बच्चों की पैदाइश के अमल से गुजरेगी तो उससे नुकसान होंगे, और फिर वो इतनी मैच्योर नहीं होगी कि वो बच्चों की सही परवरिश कर सके, उनकी तरबियत कर सके, उनको तालीम दे सके। या बच्चे पैदा करके जमीन पर फेंक देने होंगे, उनको एक अच्छा शहरी बनाना है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सामने रखकर हमारे यहाँ ये कानून बनाया गया है कि 16 साल की उम्र से कम की लड़की और 18 साल से कम उम्र लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल ये कि ये कानून बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता इसमें ये इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि अगर किसी जगह किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा हो गई है तो वो अदालत में जाए और जाकर इसके लिए इजाजत की दरखास्त करे। उसके खसूसी हालात में ये हो सकता है कि कोई अदालत उसको इजाजत दे दे। आम कानून जो कुछ बना दिया गया वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें कोई चीज अल्लाह की शरीयत के खिलाफ नहीं।
थोड़ा सा इसको इस चीज को गांधी साहब एक्सप्लेन कीजिएगा। आपने कहा जी कि इससे कम 18 साल से कम उम्र लड़का और 16 साल से कम उम्र लड़की, अगर उन्होंने शादी करनी हो या उनके वालदैन ने शादी करवानी हो या व्हाटएवर द सिचुएशन इज, तो वो अदालत में जाके राबता करें, और अदालत अगर इजाजत दे दे तो फिर ठीक है। अदालत कैसे उसको असेस करेगी कि इसको इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए कि जी 18 साल से कम लड़का है और 16 साल से कम लड़की है?
एक मैंने सिर्फ एक इम्कान बयान किया है कि अगर कोई कानून में तरमीम करनी है, अगर बाज इलाकों में जैसे हमारे देहाती इलाकों में बाज़ औक़ात लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, उनको वडेरों से अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए बसा औकात जरा कबल वक्त शादी करना पड़ जाती है।
अच्छा।
इस तरह की कोई मुश्किल अगर हो तो उसके लिए हमारी पार्लियामेंट बहस करे बाकायदा।
अच्छा।
मैं जिस बात को वाजे कर रहा हूँ वो ये है कि ये इंसानी कानून है जो हमने बनाया है, इसमें तरबीब हो सकती है, लेकिन इसको ये कह के खत्म कराने की कोशिश करना कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के जितने कानून हैं वो लोगों की बहबूद फलाह और उनको किसी मुसीबत से और किसी मुश्किल से बचाने के लिए बनाए जाते हैं, उन कानून की इस्लाह होती रहनी चाहिए अपने माशरे की जरूरतों के लिहाज से। पार्लियामेंट में बहस कर लीजिए, लेकिन ये बहस शरीयत के हवाले से नहीं होगी, ये लोगों की मसलियत के हवाले से होगी कि उनके लिए क्या बेहतर है और उनको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही किसी कानून से, ये देखा जाए।
ठीक। अच्छा, एक और चीज जो मैं अक्सर पूछता भी रहता हूँ, मैं शेयर भी करने की कोशिश करता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, आपसे भी मशवरा चाहूंगा, आपकी इनपुट चाहूंगा इस पे। कुरान पाक को पढ़ा ऐसा जाता अच्छे तरीके से और किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लिया जाता और जिसपे समझ आ जाती कि कुरान पाक कह क्या रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज तो नहीं है, बजाय इसके कि हम कुरान पाक को एक अलमारी में ऊपर वाले खाने में रख दें और उसको पढ़ने से भी हम गुरेज करें, और अगर हमें अरबी में नहीं समझ आ रही, अगर नहीं समझ आ रही तो हम किसी और लैंग्वेज में पढ़ लें, तो उससे जिंदगी आसान नहीं हो सकती? और इंस्टेड हम जब जाते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती, नो हाउ नहीं होती, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उन लोगों पे जो लोग टेक ओवर करके बैठ चुके हैं, इस्लाम के ठेकेदार बन चुके हैं, और उनके पास भी एज सच नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो उस वैक्यूम को उसके अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई, क्योंकि हम लोग इस्लाम से परे हो गए, हमें नॉलेज नहीं थी, और उन लोगों ने जो भी तारीफ की, जो भी डेफिनेशन दी इस्लाम की, या जो भी मसले का हल बताया, हम उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल अंधों की तरह। सो डोंट यू थिंक वी शुड लाइक फॉलो कुरान पाक, रीड कुरान पाक इन वट एवर लैंग्वेज वी वॉन्ट टू रीड, जो हमें समझ आती हो?
मैं तो इस मामले में इतना इकरार करता रहा हूं कि कुरान मजीद नाजिल ही इसलिए किया गया है कि हम उस पर गौर करें, उसको समझें और उससे नसीहत हासिल करें। तो अगर आप उसको उठा के रख देंगे या अरबी जुबान में उसकी नाजरा तलावत जिसको कहा जाता है वो करेंगे, तो ये तो कुरान मजीद की तौहीन है। अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, वो नाजिल इसलिए की गई कि लोग उसकी आयतों पर गौर करें। देखिए, कुरान मजीद ने खुद उसको बयान किया है, कुरान का इरशाद है कि किताब अनज़लना हो मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, कि ये किताब बाबरकत किताब इसलिए नाजिल की गई है कि लोग इस किताब पर गौर करके तदब्बुर करके इसको समझें और इससे नसीहत हासिल करें, और अकल वाले ही इससे नसीहत हासिल करते हैं। कुरान मजीद ने जगह जगह इस पर जोर दिया है कि उसको पढ़ा जाए, उसकी तलावत की जाए, उसको समझा जाए, उसकी हिदायत पर अमल किया जाए। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम बचपन ही से अपने मुसलमान बच्चों में ये चीज पैदा कर देते हैं कि ये कोई समझ कर पढ़ने की किताब नहीं है। मैंने तो इससे आगे बढ़कर कई मरतबा ये कहा है कि हमारे स्कूलों में भी ये इस्लामियात का जो मजमून हमने दाखिल किया हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह की किताब पढ़ानी चाहिए और अपने बच्चों को उसकी जुबान भी सिखा देनी चाहिए। लेकिन जो लोग उसकी जुबान से वाकिफ नहीं है उनको बहरहाल उर्दू, अंग्रेजी है या किसी अपनी जुबान में पढ़ना है, ये तर्जमे उलमा किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि लोग अपनी अपनी जुबान में कुरान मजीद को समझ सकें, पढ़ सकें। कुरान मजीद का एक आम आदमी के लिए पैगाम हर तर्जमे से वाजे हो जाता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप इसमें जिस आलिम पे एतमाद रखते हैं उसका तर्जुमा पढ़ लीजिए, लेकिन एक मरतबा कुरान मजीद को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए और कागज पेंसिल लेके पढ़ना चाहिए। जहां कहीं उसको कोई मुश्किल पेश आए वहां वो अच्छे अहले इलम से पूछ ले, और सादा तर्जुमा भी अगर वो पढ़ेगा तो कुरान का बुनियादी मैसेज उस तक पहुंच जाएगा और फिर कोई शख्स उसको गुमराह नहीं कर सके।
अच्छा, एक और हमारे हमने देखा है कि हर थोड़े अरसे के बाद या हर साल कुछ लोग हज करने के लिए चले जाते हैं, अल्लाह ताला ने उनको हैसियत दी हुई है, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है, वो हर साल हज करने के लिए चले जाते हैं, उम्रे जब भी उनको तौफीक होती है वो चले जाते हैं। सो क्या इसी तरह हज और उम्रे जारी रखने चाहिए, करते रहने चाहिए, या ऐसा करना चाहिए कि जो लोग नहीं कर सकते हज या उम्रा उनको करा दिया जाए और खुद जो है अगर वो एक रिक्वायरमेंट जो है अपनी पूरी कर लेता है, एक शख्स कि जी उसने हज कर लिया, उसने उमरा कर लिया और वो मजीद अगर करना चाहता है, उसको तौफीक दी हुई है अल्लाह ताला ने, तो वो किसी और को करवा दे या वो खुद ही जाता रहे बार बार, क्या हाउ शुड इट बी डन जी?
माफ कीजिएगा, नो इशू जी, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हज के लिए कोटा मुकर्रर किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर सारे लोग हज करने के लिए जाना चाहें तो सऊदी हुकूमत उसका बंदोबस्त ही करने से कासिर है। चुनाचे मेरे नजदीक तो अगर आदमी ने एक मरतबा हज कर लिया है तो उसे हज से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे लोगों का हक मारने के मुतरादिफ हो जाता है। अभी भी देखिए सऊदी हुकूमत को इस मामले में कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। जाहिर है वहां लाखों लोग जाते हैं, उनके लिए तमाम इंतजाम और एहतमाम करना आसान काम नहीं होता, तो लोगों को वैसे भी इस मामले में ये रवैया इख्तियार करना चाहिए कि हज जिंदगी में एक बार फर्ज किया गया है, अल्लाह ने वो फर्ज पूरा करने की उनको तौफीक दी तो वो इस पर इक्तफा करें। इसी तरीके से उमरे के मामले में भी वहां मैंने देखा है कि अब बहुत ज्यादा हुजूम हो जाता है और उसकी बड़ी वजह भी ये है कि बहुत से लोग हर साल उमरा करने के लिए चले जाते हैं, उसमें भी लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। फिर हम जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे में लोगों को देखिए कि कितनी भूख है, कितना इफलास है, हमारे गिर्दो पेश में कितने लोग हैं जिनके लिए दो वक्त की रोटी मयसर करना मुश्किल है। अभी हम थर की क्या दास्तान सुन रहे हैं, गलियों में मोहल्लों में वो बच्चे हैं कि जिनके वालदैन उनको स्कूल नहीं भेज सकते, बच्चियां हैं कि उनको घरों से उठाना गरीब लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो अपने गिर्दो पेश पर भी एक निगाह डालनी चाहिए कि मेरे मोहल्ले में, मेरे खानदान में वो कौन लोग हैं कि जिनकी जरूरतें मेरे सामने हैं, ये जरूरतें मुकद्दम है। यानी अल्लाह ताला ने इंसानों के हुकूक को बड़ी गैर मामूली अहमियत दी है। आप अपने गिर्दो पेश से बेनियाज होकर अगर हज उमरा के अखराजात खत्म करने के लिए निकल खड़े होते हैं तो मुझे अंदेशा आया कि खुदा की बारगाह में कहीं पूछा ना जाए कि तुम्हें हम साये में कोई गरीब नजर नहीं आया था, कोई बच्ची नजर नहीं आई थी जिस पर के सर पर शफकत का हाथ रखने की जरूरत थी, कोई तालिब इल्म नजर नहीं आया था कि जिसकी तालीम अधूरी रह रही थी। ये सारी चीजें भी देखना नागुजीर है और जरूरी है। इसके बाद भी अगर किसी के पास गुंजाइश है तो ये आपने अच्छी बात कही कि कितने लोग हैं कि जो ये हसरत लिए दुनिया से रुख्सत हो जाते हैं कि वो हरमैन की ज्यारत करें और वहां जाए, तो ऐसे लोगों को और बिलखसूस गरीबों में से ऐसे लोगों को अगर आप हज करा दें या उमरा करा दें तो मेरा ख्याल ये है कि खुद हज करने और उमरा करने से भी शायद आदमी को ज्यादा इसका अजर अल्लाह के यहां मिले।
अच्छा, एक चीज जो लोगों के जहनों में, आपने एक मरतबा इसका जिक्र किया था लेकिन आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन डिटेल, जी एलेबरेट कर दें अगर आप इस चीज को, एंड दैट इज के वही बात जो लोग जाते हैं हज करने या उमरा करने और खाना काबा को कहते हैं जी पहली नजर में देख के जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, सो इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं ये करना आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये नहीं मैं कह रहा कि किसी के लिए खुदा न खास्ता मौत मांगी जाए या किसी के लिए ये मांगा जाए कि जनाब उसकी टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, या उसके लिए कोई कोई ऐसा गलत चीज नहीं मांगी जाए, उसके लिए किसी के लिए बदवा नहीं मांगी जाए, लेकिन जो दुआएं मांगी जाती हैं खाना काबा को पहली नजर में देख के, उनमें से कई लोगों की एक्सपीरियंस ये है कि वो कबूल होती है, कई लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि वो कबूल नहीं होती, उसकी क्या वजह क्या है?
दुआ के कबूलियत के लिए अल्लाह के कवानीन है, उनके तहत कबूल होती है। अगर इस तरह से अल्लाह ताला ये कह दें कि हर दुआ कबूल कर ली जाएगी तो दुनिया में फसाद बरपा हो जाएगी, क्योंकि इंसान का क्या है, वो कोई भी ख्वाहिश कर सकता है। बारिश की दुआ कर रहा हूं मैं इसलिए कि मुझे अपने खेत के लिए बारिश चाहिए, और एक झोंपड़ी वाला अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अगर बारिश हुई तो झोंपड़ी बह जाएगी इसलिए बारिश नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों दुआएं एक ही वक्त पे हो रही होती है। अल्लाह ताला अपने कानून के मुताबिक अपनी हिकमत के तहत दुआओं को कबूल करता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने यह फरमाया है कि अगर कोई दुआ कबूल नहीं होती तो अल्लाह उसका अजर बंदा मोमिन के लिए क्यामत के दिन महफूज कर लेता है, और कबूल ना होने की वजह यह होती है कि वो चीज बंदे के लिए मौजू नहीं होती, या इंसानियत के लिए मौजू नहीं होती, या खुदा की हिकमत के खिलाफ होती है। ये बात कि जो दुआ आप करेंगे खाना काबा को देखकर लाजमन कबूल हो जाएगी, किसी सही रवायत में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। इस तरह की बेशुमार चीजें लोगों में शोहरत पा जाती हैं, दरा हाले कि उनकी कोई बुनियाद नहीं होती। दुआओं की कबूलियत और अदम कबूलियत के बारे में एक ही कानून है कि खुदा उसको अपनी मसलियत के तहत, अपनी हिकमत के तहत कबूल करता है और बंदे को बहरहाल दुआ का अजर जरूर दे देता है और वो कयामत में उसको मिल जाएगा।
तो बंदे को कयामत तक इंतजार करना पड़ेगा, अगर उसकी उसकी दुआ अगर दुनिया में कबूल नहीं हो रही तो वो कयामत तक इंतजार करेगा, ऐसा ही है?
यकीनन ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि दुनिया इम्तहान के लिए बनी है, यहाँ हर चीज आपकी पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह के कुछ कवानीन हैं, कुछ असबाब हैं, उनके तहत जहाँ मामला होते हैं। आप कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ के दुआ करें कि मेरे ऊपर आठ आने नाजिल हो जाए तो अल्लाह के कानून के खिलाफ है ये। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा और जाके दुकान खोलनी पड़ेगी या मजदूरी करनी पड़ेगी। ये बहाना बनेगा, ये असबाब पैदा होंगे, तभी ये होगा। दुनिया और कानून पर बनाई गई है, आखिरत एक दूसरे कानून पर बनाई गई है। ये इम्तहान की जगह है और वो जजा और सजा की जगह।
अच्छा, हालात बेहतर क्यों नहीं होते मुसलमानों के? मुसलमानों पे सारी आफतें क्यों आती हैं? सारी इम्तिहान मुसलमानों के लिए क्यों?
उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने अपने आप को इसका मुस्तक कर लिया है। या मैं आप इस बात से वाकिफ नहीं है कि अखलाकी लिहाज से हम किस फस्ती में उतर चुके हैं? हम में से कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में पूरे एतमाद के साथ कहा जा सके कि ये धोखा नहीं देगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये बदयानती नहीं करेगा, ये ख्यानत नहीं करेगा। आप देखिए, बाजारों में जाकर देख लीजिए, मामला करके देख लीजिए। आदमी के अखलाक और किरदार का असली इम्तहान तो उस वक्त होता है जब आपको उस पर मामला पड़ता है। और मामलात में हम अब जिस सतह पर उतर चुके हुए हैं, मुझे तो वाकया ये है कि मैं महसूस करता हूं कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जो कुछ हमें इस वक्त हासिल है। 50-51 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत बहाल हो गई है, दुनिया की बड़ी कौमों के सहारे ही पर सही, लेकिन बहरहाल किसी हद तक वो अपने नज्म नस्क को खुद चला रहे हैं। इस पर खुदा का शुक्र करना चाहिए, वरना हमारे जो हालात हैं उनका आप अंदाजा कर सकते हैं क्या है। ये देखिए कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी हम दुनिया भर में एक झूठी कौम की हैसियत से अपना तारुफ कराते हैं। इस वक्त आपको जो आजादी और जो कानून की अमलदारी मगरबी ममालिक में मयसर होती है, क्या आप मुसलमान मुल्कों में किसी मुल्क की मिसाल दे सकते हैं? आप अमेरिका और बरतानिया में जाएं तो वहां आप कानून के मुताबिक रह सकते हैं, आपको शरीयत तक मिल सकती है। जरा मुसलमान मुल्कों के हालात का जायजा भी लेकर देख लीजिए क्या सूरत हाल है। हम उम्मत मुस्लिमा की बातें बहुत करते हैं, लेकिन क्या कोई शख्स सऊदी अरब में अपने लिए 4 मरले जमीन भी खरीद सकता है? तो ये हकायक है, हकायक को सामने रखकर देखना चाहिए। हर जगह बादशाहते हैं, लोगों के हकूक पर बादशाहते हैं या आमरियतें हैं। 2-4 ममालिक हैं जिनमें आपको कोई जमहूरी रवायात मिलती है, वो भी अभी उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे की होनी चाहिए। तो किसी भी पहलू से आप जायजा लें, बाजारों का जायजा लें, मंडियों का जायजा लें, आप दफ्तरों का जायजा लें, हर जगह करप्शन का दौर दौरा है। हम तो अपनी बनाई हुई दवा पर एक माद नहीं कर सकते। तो आखिर अल्लाह ताला ने क्या बेइंसाफी की है? अल्लाह का कानून बिल्कुल बेलाग है। कुरान मजीद की सूरह बकरा में बनी इसराइल जो खुदा की मुंतखब कौम थे, उनके बारे में अल्लाह ताला ने यह फरमा दिया है कि जिस वक्त तुमने नाफरमानी की और अल्लाह के हुदूद को तोड़ा तो तुम्हारी पीठ पर भी ताजियाना बरसता है। अल्लाह की किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। उसने अगर हमें ये इज्जत दी है कि हमारे पास खुदा का आखिरी पैगाम है, हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, तो हमारा इम्तहान भी उतना ही सख्त है। चुनाचे हमें उसके तकाजों के लिहाज से जिंदगी बसर करनी चाहिए। हमारा तारुफ दुनिया में ये होना चाहिए कि हम सच बोलते हैं, हम बदयानती नहीं करते, हम किसी का माल नहीं खाते, हम किसी को धोखा नहीं देते। हमारे यहाँ कोई कम तोलने का तस्वुर नहीं करता, हमारे यहाँ मिलावट का कोई तस्वुर नहीं है। अगर वाकई हमारा ये तारुफ दुनिया में है तो फिर खुदा से गिला करने का हमको हक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने गिरेबान में मोह डाल के देखना चाहिए कि हमें अपने साथ क्या करना है।
अच्छा, एक नई बहस आजकल चल रही है गांधी साहब, और इसमें मर्द तो बहुत खुश हैं लेकिन औरतें बड़ी परेशान हैं, और खास तौर पे वो औरतें जो पहली बीवियां हैं। और वो बहस ये है जनाब के एक मशवरा दिया गया है, आई वोंट नेम दैट किसने दिया है, लेकिन मशवरा ये आया है जनाब कि उसको पार्लियामेंट में बहस भी किया जा सकता है कि मर्द जो है पहली बीवी से पूछे बगैर शादी कर सकता है, ऐसा हो सकता है?
यहां पर भी वही मुसीबत है तो ये कानून मुल्क में बनाया गया तो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, ऐसी कोई चीज नहीं है। जब हमारे यहाँ शादी की जाती है तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि एक अनरिटन माहिदा होता है, यानी मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी, कि अब ये दूसरी शादी नहीं करेगा। तो मैं तो इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझता हूँ। वैसे ही खासतौर पर पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुआशरे में हम इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी करते हैं। और हमारी हुकूमत ने एक जमाने में कानून बना दिया कि इसमें आप औरत से पूछे, यानी पहली बीवी से पूछे, इसमें भी कोई चीज शरीयत के खिलाफ नहीं है। यहाँ मलेशिया में ये कानून है कि आपको अदालत को मुतमिन करना पड़ता है जाकर। इस तरह का कानून भी बनाया जा सकता है। इंसान को कानून साजी का हक उन मामलात में दिया गया है जिनमें अल्लाह ने कोई कानून नहीं बनाया। तो अल्लाह ताला ने तादुद अजवाज पर दो पाबंदियां लगा दी, वो हमेशा के लिए लग गई हैं, इसलिए कि वो खुदा की लगाई हुई है। हम अगर कोई और पाबंदी अपने हालात के साथ लगाना चाहें तो हम भी लगा सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसकी इसलाह कर लेंगे। असल में कानून साजी की बुनियाद ये होती है कि किसी काम से अगर कोई खराबी पैदा हो रही है, किसी का हक तलब हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो उसको रोकने के लिए कानून साजी की जाए। और इसी उसूल पर यह कानून बनाया गया था। मेरे नजदीक अगरचे उस पर भी हमारे यहाँ कभी अमल नहीं हुआ, लोग कानून को धोखा देते हैं, और उसमें है भी क्या, चंद महीने की कैद है और गालिबन 5,000 रुपए जुर्माना है। मेरा तो एहसास है कि उस कानून को बेहतर करना चाहिए ताकि औरतों के हकूक का तहफ्फुज़ हो और उनके साथ वो ज्यादती ना हो जो हमारे यहाँ आमतौर पर हो जाती है। इस तरह की कानून साजी से कोई चीज भी शरीयत की नहीं टूटती। शरीयत की खिलाफवर्जी तब होगी जब मिसाल के तौर पर यह कानून बना दिया जाए कि अदल किए बगैर भी आप शादी कर सकते हो, तो ये शरीयत के खिलाफ होगा। बाकी जिन मामलात में शरीयत खामोश है उनमें कानून साजी का सोसाइटी को, माशरे को हक आता है।
अच्छा, मैं थोड़ा सा मजीद इस पे आपसे पूछना चाहूंगा। रामजी साहब, ये पूछना चाहूंगा कि जैसे चार शादियों की इजाजत मिली इस्लाम में, तो वो चार शादियों में हर बीवी से पूछना पड़ता है या उससे पूछना पड़ेगा या उनको सबको इक्वली रखना पड़ेगा? और ये जो बहस है कि जनाब मर्द जो है दूसरी शादी कर ले बेशक पूछे बगैर पहली बीवी से, सो इसको अगर ये समझा जाए कि गलत है और इस पर कानून साजी होनी चाहिए जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो शुड वी गो फॉर दिस थिंग? और या चार शादियों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, उसमें भी सब बीवियों से पूछना पड़ेगा?
ये देखिए, ये बात ही सही नहीं है कि इस्लाम ने चार शादियों की इजाजत दी है।
ये सही नहीं
है। शादियों की इजाजत तो दुनिया में पहले से मौजूद थी, यानी क्या इस्लाम से पहले एक से ज्यादा शादी करना ममनू था? जब से दुनिया बनी है लोग एक शादी भी करते थे। खुद अल्लाह ताला ने जब आदम को बनाया तो एक ही हव्वा बनाई और इस तरह ये पैगाम दिया कि एक ही मियां बीवी से सही घर बनता है, वरना तो अल्लाह ताला एक आदम के लिए तीन या चार हव्वा बनाते, ऐसा नहीं किया गया। बाद के जमानों में तमद्दुनी और समाजी जरूरतों के तहत खास तौर पर कबायली जिंदगी में लोग ज्यादा शादियां करने लग गए, इससे रोका नहीं गया। हमारे यहाँ कुरान मजीद में आकर एक अपील की, जिस जमाने में जंगे ओहद हुई है तो उस वक्त बहुत सी औरतें बेवा हो गई थी, तो कुरान ने अपील की कि तुम आम हालात में तो शादियां करते ही हो, ये बेवा खवातीन है, इनको सहारा देने के लिए इनके साथ शादी कर लो ताकि इनके यतीम बच्चों की परवरिश का बंदोबस्त हो सके। तो ये अपील की गई, उस मौके के ऊपर दो पाबंदियां लगाई गई। यानी यूं नहीं है कि इस्लाम ने शादी करना मना था, एक से ज्यादा आके इजाजत दी नहीं। शादी तो लोग करते थे, अरब में बहुत शादियां होती थी, इससे पहले भी अंबिया अलैहिस्सलाम के यहां भी आपको एक से ज्यादा शादियों की मिसालें मिलेंगी। कदीम कबायली तमद्दुन में लोगों की जरूरत होती थी, जब तक किसी आदमी के 10-20 लड़के ना हो उस वक्त तक वो कबीले में खड़ा नहीं हो सकता था, तो लोग एक से ज्यादा शादियां करते थे उस जमाने की जरूरतों के लिहाज से। कुरान मजीद ने जब अपील की तो उस पर दो पाबंदियां लगा दी। एक पाबंदी ये लगाई कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर अज़राए करम यतीमों की बहबूद के लिए भी और उनकी परवरिश के लिए भी दूसरी शादी मत करो, तो एक पाबंदी ये लगाई। और दूसरी ये लगाई कि अगर अदल कर सकते हो तो फिर इन यतीमों की माओं को सहारा देने के लिए और इन यतीमों की परवरिश के लिए तुम दो दो तीन तीन चार चार औरतों से शादी कर ले। ये बात है जो कुरान मजीद में कही है, यानी ये चार शादियों की इजाजत दी है, ये ना कुरान में है ना हदीस में। शादी की इजाजत रही है पहले से, कुरान ने उस पर ये दो पाबंदियां लगाई है। हमको हक हासिल है कि हम उस पर कोई और पाबंदी भी लगा दें अपने जमाने के लिहाज से। हमारी लगाई हुई पाबंदी की गलती अगर वाजे हो जाएगी हम उसको तब्दील कर लेंगे, अल्लाह की लगाई हुई दोनों पाबंदियां हमेशा के लिए लग गई।
तो मैं जरा अगर सही समझा तो ये है कि उस वक्त के हिसाब से ये था कि जो बेवा औरतें हैं उनके साथ शादियां कर ली जा सकती हैं और उनकी ताकि उनको टेक केयर किया जा सकता है, और उस एनवायरमेंट को सामने रखते हुए वो ये बात की गई थी। कुरान पाक में आप कह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं
है, ये अपील की कुरान मजीद ने, यानी बाकायदा तरगीब दी लोगों को कि वो बेवा औरतें, जाहिर है उस जमाने के हालात के लिहाज से जंगे उहद में कुछ 70 के करीब सहाबा शहीद हो गए थे, तो अपील की कुरान मजीद में, जैसे आप सैलाब के लिए थल के लिए अपील कर रहे हैं कि इन बच्चियों और इन यतीमों की सरपरस्ती के लिए आप इनकी बाओं से शादी कर ले दो दो तीन तीन चार चार, इस लिहाज से ये मामला कुरान में जेर बहस आया है। ये सिरे से कोई एक से ज्यादा शादी देने की शादी करने की इजाजत का मामला ही नहीं है, इससे बिल्कुल लोग गलत बात करते हैं। इस्लाम में एक से ज्यादा शादी पर सिर्फ दो पाबंदियां लगाई गई, बाकी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। पाबंदी इस्लाम जब लगा देता है या शरीयत लगा देती है तो वो हमेशा के लिए लग जाएगी, इसलिए कम से कम पाबंदी जाती है। हम कानून साजी करते हैं, गलती वाजे हो जाती है, कानून को तब्दील कर लेते हैं, तो इस वजह से कुरान मजीद ने जो पाबंदियां लगा दी है वो हमेशा के लिए लग गई। हम अगर आप कोई पाबंदी लगाएंगे तो हमको हक हासिल है कि हम लगाएं, और अगर उसकी गलती वाजे हो जाएगी तो हम उस पर तब्दीली करें।
जरा दूसरी पाबंदी के बारे में जो लगी है उसके बारे में थोड़ा मजीद जरा बता दीजिएगा गांधी साहब, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोग उसको दोबारा सुनना चाह रहे हैं।
यानी एक पाबंदी ये लगाई कि यतीमों की परवरिश के लिए अल्लाह ताला अपील कर रहे हैं, ये देखिए ये इजाजत देने का मसला नहीं है, अपील कर रहे हैं, यानी बाकायदा अल्लाह ताला की तरफ से तरगीब दी जा रही है कि इन बच्चियों की और इन बच्चों की जो यतीम हो गए हैं अगर तुम और किसी तरीके से परवरिश नहीं कर, कुरान के अल्फाज ये है कि वही सिफ्तुम अल्लाह तुक से तू फिर यतामा, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम इन यतीमों के मामले में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो इनकी माओ के साथ दो दो तीन तीन चार चार शादी कर लो, ताकि इनको सहारा मिल जाए और ये औरतें तुम्हारे साथ शरीक हो जाए और इन यतीमों की मामलात की निगेबानी की जा सके। ये अपील की है कुरान मजीद ने, इस मौके के ऊपर ये बात आगे कह दी है कि अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर नहीं, यानी अगर इंसाफ कर सको तो फिर इन यतीमों की परवरिश के लिए, इनकी बहबूद के लिए दो दो तीन तीन चार चार औरतों से शादी कर लो। तो क्योंकि चार पर अल्लाह ताला ने जाके खामोशी इख्तियार कर ली तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नतीजा निकाला कि जब अल्लाह ताला ने एक बड़ी जरूरत के मौके पर भी हमें चार से ज्यादा की इजाजत नहीं दी तो आम हालात में भी हमें इससे ज्यादा शादी नहीं करनी चाहिए, ये सारा मसला है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, हमारी पार्लियामेंट को हक हासिल है कि वो औरतों की बहबूद के लिए या किसी मजरत से बचाने के लिए कोई पाबंदी लगा दे। वो पाबंदी ये भी हो सकती है जो अभी लगाई गई कि आप इजाजत लें, और ये भी हो सकती है कि आप अदालत में जाके अपनी जरूरत बयान करें कि आप क्यों शादी करना चाहते हैं।
सो ये बात बिल्कुल आपने क्लियर बता दी कि जनाब इस किस्म की कोई चीज ये नहीं की गई कि चार शादियां की जा सकती हैं,
ये सिरे से जेर बहस ही नहीं है कुरान मजीद में, यानी वो शादियां पहले ही लोग कर रहे थे, दो दो चार चार नहीं दस दस बारह बारह कर रहे थे, कबाइली मुआशरे के अंदर लोगों की जरूरत होती थी। अल्लाह ताला ने दो पाबंदियां लगाई है, यानी गोया यूं समझ लीजिए कि एक एक चीज जो सोसाइटी में जायज थी, जो हो रही थी, जिससे लोग पहले फायदा उठा रहे थे, अल्लाह ने ये चाहा कि यतीमों की बहबूद के लिए भी उससे फायदा उठाया जाए।
ठीक, एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा जी, शराब के बारे में बड़ी कंफ्यूजन है और कंफ्यूज कर दिया जाता है, बल्कि कंफ्यूजन है सच तो नहीं है लेकिन कंफ्यूज कर दिया जाता है, शराब पी जा सकती है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कोई भी ऐसी रख के सामने सिचुएशन, शराब पी जा सकती है या नहीं पी जा सकती, हराम है?
शराब बिल्कुल ममनू है, बल्कि अल्लाह ताला ने बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा है कि ये रिज्सुम मिन अमल शैतान है, ये गंदा शैतानी काम है, इससे हर मुसलमान को अपने आप को बचाना चाहिए। तो अल्लाह की बारगाह में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बाकी आप इसके लिए कोई कानून बनाए या ना बनाए, अल्लाह की शरीयत में इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, उसको हुकूमत पर इंतजामिया पर छोड़ दिया गया है। लेकिन अल्लाह ताला के हाँ ये एक गंदा शैतानी काम है, रिज्सुम मिन अमली शैतान का है इसको कुरान मजीद में, क्योंकि इससे इंसान की अकल खप्त हो जाती है, तो इस वजह से इसको अल्लाह ताला ने ममनू करार दिया है, इसके लिए कोई जवाब नहीं।
लफ्ज क्या यूज हुआ है रामजी साहब, ममनू या हराम, और हराम और ममनू में फर्क क्या है?
उससे बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये तो बड़े छोटे लफ्ज है।
अच्छा।
ये फरमाया है कि रिज्सुम मिन अमली शैतान फजतनिबू हो, ये गंदा शैतानी काम है, इसके बाद आ जाओ, और फिर कहा फालम तुम मुंतहून, क्या इसके बाद भी बाद नहीं आते हो जबकि खुदा ने ये बात कह दी है? ये कुरान मजीद की आयात का लफ्जी तर्जुमा है जो मैंने आपको सुनाया।
अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया है गांधी साहब, मेरे पास एक मैसेज आया है, और ये मैसेज आया है कैनेडा से, और ये कह रहे हैं जनाब के एक उनके शोहर, एक खातून है, वो कह रही है जनाब उनके शोहर जो है उन्होंने उन्हें वर्बली डिवोर्स, डिवोर्स मी वर्बली एंड आई फाइल डिवोर्स इन कैनेडा वाइल ही वॉज इन पाकिस्तान। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दैट माई प्रीवियस हस्बैंड डिड नॉट डिवोर्स मी वर्बली एंड आई फाइल्ड डिवोर्स इन कैनेडा वाइल ही वॉज इन पाकिस्तान, इज दैट अ रियल डिवोर्स एंड इफ नॉट आई एम मैरिड टू अदर मैन टू एन अदर मैन सो इज दैट अ रियल मैरिज। और वो कह रही है कि वो आप समझ गए, अब वो दूसरी शादी कर।
जी मैं समझ गया, लेकिन ये उन्होंने जो इनके खिलाफ कनाडा में दरखास्त दायर की अदालत में, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है तो नहीं उन्होंने बयान किया।
हाँ, ये बयान नहीं किया जी उन्होंने कि वहां पे क्या।
जाहिर है कि अगर उनके शौहर पाकिस्तान में थे और उन्होंने वहां पर उनसे तलाक फाइल की, तो वहां की कोर्ट ने कोई कार्रवाई की होगी ना उस मामले में।
बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है।
पहली चीज तो ये है कि तलाक बाकायदा होनी चाहिए, और वो तलाक अगर उन्होंने अदालत में तलाक के लिए दरखास्त की है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने खुला मांगा है, उसके लिए एक पूरी कार्रवाई होगी और उनके शौहर को भी बुलाया जाएगा। कैनेडा की अदालत ने क्या कार्रवाई की उस मामले में, पहले तो वो मालूम होना चाहिए। अगर बाकायदा तरीके से अदालती कार्रवाई होकर तलाक हो गई है तो फिर उनको हक हासिल है कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चीज किसी तरह भी जायज नहीं है। ये तो फिर एक शौहर के निकाह में होते हुए दूसरा निकाह करने की जसारत है।
ठीक, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, एक और सवाल आया मेरे पास थी, और ये पूछ रही है कि क्या औरत किसी शख्स को, किसी मर्द को प्रपोज कर सकता है, कर सकती है?
बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं करेगी? औरत ने भी फैसला सुनाना है, मर्द ने भी फैसला सुनाना है। असल में तो ये हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के टेबूज है, वरना अरबों के मुआशरे में तो औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में आके अपनी राय दे देती थी और कह देती थी कि मैं फलां से शादी करना चाहती हूँ, इसमें क्या हर्ज की बात है। इस तरह की चीजों को बल्कि खत्म करना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में लोग इस शादी के मामले को आसान बनाए।
अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आखिरी सवाल है, लेकिन यहाँ पे मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, एक मैं वाकई ही आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, और वो ये है कि इमामत जो है औरत करा सकती है, और अगर करा सकती है तो फिर ये जो क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया जाता है हुक्मरानी पर, तो हुक्मरान अगर औरत बन जाए तो उस पर क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया जाता है, तो ये व्हाट इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन?
औरत की हुक्मरानी के बारे में कोई हुक्म नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस इस मामले में बयान की जाती है उसको मतलब बिल्कुल दूसरा है, इसलिए औरत भी हुक्मरान हो सकती है, मर्द भी हुक्मरान हो सकता है। हुक्मरानी का ताल्लुक इससे है कि लोगों का एतमाद किसको हासिल है। लोगों का एतमाद अगर मोहतरमा बेनजीर साहिबा को हासिल है तो वो हुक्मरान होंगी, और ये बिल्कुल जायज हुक्मरानी होगी। इस्लाम में अगर इसको रोकना होता तो बाकायदा तरीके से अल्लाह ताला रोक देते, या अल्लाह का पैगंबर रोक देता, ऐसी कोई बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लम ने दरहकीकत कुरान दुख पर एक तबसरा किया था, और उस तबसरे को लोगों ने गलत बिल्कुल समझ लिया, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है। एक बात ये, दूसरी चीज ये है कि जहां तक औरत के नमाज की इमामत कराने का ताल्लुक है, ये हमारे यहाँ रिवायत नहीं रही, आमतौर पर एक तहजीब बनती है, एक रिवायत बनती है किसी उम्मत में या कौम में, तो उसमें हमारे यहाँ यही है कि मर्द कराते हैं, लेकिन औरत के इमामत कराने को रोका नहीं गया। बल्कि हदीसों में ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लम के जमाने में एक खातून को बाकायदा तौर पर एक मस्जिद का इमाम मुकर्रर किया गया और उनका मुअज्जिन एक मर्द था, और बाद में यही खातून है जिनको हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बाजार या मार्केट के मामलात की जिम्मेदारी भी दी। तो इस वजह से ये कोई ममनू चीज नहीं है, अलबत्ता ये तहजीबी रवायत हमारे यहाँ नहीं कायम हुई।
मुझे समझ नहीं आ रही, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ, लेकिन गांधी साहब आपके फैंस इतने ज्यादा हैं कि मुझे परेशानी हो रही है। वक्त भी मेरा बहुत कम रह गया, बल्कि ज्यादा हो चुका है, मैं अपने वक्त से ज्यादा मुकर्रा वक्त से ज्यादा प्रोग्राम कर चुका हूं। लेकिन एक एक छोटी सी गुजारिश और है, और ये है कि जनाब, क्या खातून एक किसी के निकाह में अगर कोई खातून है और अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है और किसी मर्द को पसंद करती है तो वो क्या करे?
को तलाक लेनी चाहिए, वो अदालत में जाए जाकर तलाक लेने, हमारे अब मौजूदा कानून के मुताबिक तो अगर वो अदालत में जाके सिर्फ इतना कह देगी कि मैं इस शख्स के साथ अब किसी तरह भी रहने के लिए तैयार नहीं हूं, तो अदालत उसको खुला दे देगी, वो अलहदगी इख्तियार करे और फिर जहां जाना चाहती है चली जाए।
अदालतों के चक्कर में लोग पड़ते नहीं है गांधी साहब, वहां पे बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, और औरतें खास
फिर अपने शौहर से दरखास्त करेगी मैं आपको मैं पसंद नहीं करती, मुझे तलाक दे दो। मैंने तो जिस जमाने में मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल में था, तो इस मसले को आसान बनाने के लिए एक बाकायदा कानूनी तजवीज दी थी, उस पर बाद में कुछ हुआ नहीं, उससे औरतों को अदालतों के चक्कर से निजात हो जाती। लेकिन मौजूदा कानून में तो ये, या वो अदालत में जाएंगी या फिर शौहर पर दबाव डालेंगी और उनसे तलाक ले लेंगी।
और शौहर अगर फिर भी ना माने तो
फिर मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फिर उनके पास कोई रास्ता इसके सिवा नहीं है कि अदालत में चली गई।
ठीक है गांधी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत भी नासाज थी, आपने फिर भी वक्त निकाला हमारे लिए, आई एम रियली ग्रेटफुल जी, बहुत शुक्रिया आपका गांधी साहब
जी, बहुत शुक्रिया।
जावेद अहमद गांधी साहब जी, जो सवालात सारे शायद आपको जवाब ना मिल सके हो, क्योंकि आपकी बड़ी लंबी फहरिस्त थी जो मेरे पास आती रही, बड़े लंबे लंबे सवालात थे आपके, शायद सबको मैं एंटरटेन ना कर सकूं कर सका, लेकिन कई सवालात ऐसे थे जिनके जवाब मैं लेकर देने की कोशिश की आपको, और गांधी साहब ने भी बड़ी तफसीलन आपको जवाब दिए। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।